सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले मेरे प्यारे नौजवान दोस्तों, नमस्कार। फ्रेंड्स, पिछले चार दिनों से हम लोग प्री-2022 के बारे में बातें कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि आप सब कैसा महसूस कर रहे हैं इसके बारे में। आज मैं उसके अगले स्टेप के अंतर्गत एक अलग ही बिंदु पर बात करने जा रहा हूं और मैं चाहूंगा कि आप सब इस पर अपनी राय दें। इस बीच में देखिए, दो दिन का वक्त है आपके पास, सैटरडे एंड संडे, फ्राइडे भी है ऑलमोस्ट, अगर आप दोपहर में से सुन लेते हैं तो। इस पर विचार करें, गंभीरतापूर्वक विचार करें और इस पॉइंट से विचार करें कि अगर दूसरे विषयों को भी लेकर के अगर कुछ इस तरह की बातें की जाती हैं तो वो आपके लिए कितना फायदेमंद रहेगा। सवाल इस बात का नहीं है कि मुझे क्या पसंद है, सवाल इस बात का भी नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपके लिए क्या उपयोगी हो सकता है। इससे भी बड़ी बात है कि आप क्या चाहते हैं। हो सकता है कि मैं अपनी ओर से तो आपको बता रहा हूं लेकिन आप उसके बारे में पहले से ही अवगत हैं तो बात खत्म हो गई। आज मैं इतिहास के कुछ प्रश्नों को लेकर के अलग ही अंदाज में कुछ बातें करने जा रहा हूं। हिस्ट्री केवल माध्यम है। इनफैक्ट मेरा जो उद्देश्य है वो हिस्ट्री पर बात करना नहीं है। हिस्ट्री के माध्यम से बहुत सारी ढेर सारे तथ्य आपके सामने रखने हैं। उदाहरण के तौर पर कैसे तथ्य, जैसे कहा जाता है या कहा जा रहा है कि इस बार जो प्री के पेपर आए वो बहुत कठिन थे। जो कट ऑफ मार्क्स, मैंने शुरू में ये बात कही थी कि पिछले बार से भी कम जा सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पिछले बार जितने ही होंगे, कुछ कहते हैं थोड़े से बढ़ भी जाते हैं। खैर देखिए, इस तरह की राय तो ऑलरेडी बनती ही रहती है क्योंकि निश्चित तौर पर कहना किसी के लिए भी संभव नहीं होता, लेकिन जब हम इस तरह की राय देते हैं तो कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव हो जाता है। अगर मुझे कठिन लग रहा है तो मैं कहूंगा कि पिछली बार से लो जा सकता है, मुझे ठीक ठाक लग रहा है तो मैं कहूंगा कि पिछली बार ही जैसा रह सकता है, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है कि इनफैक्ट पेपर था कैसा, हम उसे किस श्रेणी में रखेंगे। क्योंकि जैसे ही एग्जाम होता है, मैं आपको बता चुका हूं कि यही बात होती है कि इस बार का पेपर बहुत कठिन था, फलाना सेक्शन कठिन था, वो सेक्शन कठिन था, इससे बहुत कम क्वेश्चन आए थे, उससे ज्यादा क्वेश्चन आए थे, इससे बिल्कुल नए क्वेश्चन आ गए। जैसे यही कहा जा रहा है कि इस बार स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आ गए, जबकि इससे पहले कभी भी स्पोर्ट्स से क्वेश्चन नहीं आए थे। अरे भैया, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आ गए तो उसमें क्या बड़ी बात है, क्योंकि वो करंट अफेयर्स का हिस्सा है। और मैं डेली ऑडियो लेक्चर में आप बताएं कि क्या स्पोर्ट्स के बारे में बातें नहीं करता हूं। जब भी मुझे लगता है कि नहीं ये आपको जानना चाहिए, मैं आपको बताता हूं। और मैंने आपको बताया था कि ओलंपिक में अब कौन से नए गेम शामिल किए जा रहे हैं और मैंने विस्तार के साथ आपको बताया है और वो क्वेश्चन आ गया। तो इस तरह से जब विश्लेषण हम करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम यूपीएससी के चरित्र को अच्छे तरीके से नहीं समझ रहे हैं। अगर यूपीएससी करंट अफेयर्स की बात कर रही है तो हर वह घटना जो महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय स्तर की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उसकी जानकारी रखते होंगे। हाँ, वो किस लेवल की जानकारी है वो एक अलग बात है। दूसरी बात यह है फ्रेंड्स कि जो क्वेश्चंस आते हैं जब हमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के देखते हैं तो हम फिर ये भूल जाते हैं कि जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जो स्टूडेंट बैठ रहे हैं उस सब्जेक्ट वाला भी स्टूडेंट बैठ रहा होगा। तो अगर आप उस सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट से पूछे गए प्रश्न के बारे में पूछिएगा तो कहेगा कि यार ये तो कुछ मजाक जैसा ही है, ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ये भी कोई क्वेश्चन होता है क्या। लेकिन जिस स्टूडेंट का उस सब्जेक्ट से दूर दराज का कोई संबंध ही नहीं है, न तो पढ़ने में और न ही व्यवहार में, तो उसको लगेगा कि ये क्या उटपटांग क्वेश्चन पूछ दिया गया। क्योंकि सिविल सर्विस में जब पेपर सेट किए जाते हैं तो उसमें अक्सर इस बात का ध्यान रखने की कोशिश की जाती है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बिल्कुल वो परफेक्ट तरीके से उनकी कोशिश सफल ही हो जाती है, लेकिन कोशिश यही होती है कि एक शब्द है, सेम प्लेइंग फील्ड, यानी कि जो अलग अलग डिसिप्लिन से जो स्टूडेंट आए हुए हैं और जो एग्जाम दे रहे हैं उनको लगभग एक ही जैसा मैदान मिल सके। अगर मान लीजिए कि आप हिस्ट्री के स्टूडेंट रहे, आपने एमए हिस्ट्री से किया है, ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आपका हिस्ट्री रहा है, तो हिस्ट्री पर अगर जैसा कि मैंने कहा कि 18 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आप इसमें से 15 सही कर सकते हैं, 16 सही कर सकते हैं। और जिसका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड भी है, हिस्ट्री पता नहीं वो कब से छोड़ चुका है, जो हिस्ट्री उसने पढ़ी है वो केवल सिविल सर्विस के लिए पढ़ी है, तो पता लगा कि वो 18 में से मुश्किल से 7-8 ही कर पा रहा है, तो अब इसको आप क्या कहेंगे। तो जब भी हम कठिन और सरलता के बारे में सोचते हैं, बात करते हैं, क्योंकि उसके आधार पर हम अपनी तैयारी की रणनीति बनाते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, तो हमारे दिमाग में ये तथ्य मौजूद रहना चाहिए कि ठीक है, मैं इस सब्जेक्ट का जानकार नहीं हूं, तो मेरे लिए ये क्वेश्चन बहुत कठिन है। लेकिन इस एग्जाम में जो लोग बैठे हैं उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो इस सब्जेक्ट के जानकार हैं, उनके लिए ये बहुत सरल है, जबकि मेरे लिए जो बहुत सरल है वो दूसरे सब्जेक्ट वाले के लिए बहुत कठिन रहा होगा। तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना, ये आपका मनोविज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हाँ, कभी कभी ये होता है, अब जैसे इस साल की अगर हम बात करें तो साइंस पर जैसा मैंने कहा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हैं, मैंने आपसे कहा था कि एनवायरमेंट और मॉर्फोलॉजी को अगर हम मिला जाएं तो 16 क्वेश्चन है, और फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 12 क्वेश्चन है, तो टोटल मिलाकर के 28 क्वेश्चन हो गए। तो ये 28 क्वेश्चंस की जो संख्या है ये सामान्य स्टूडेंट के लिए थोड़ी सी आप यूं कह लीजिए कि खतरे का संकेत करने वाली संख्या है। लेकिन अब किया क्या जा सकता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो दोस्तों, मैं जो हिस्ट्री की आपसे बात करने जा रहा हूं उसके बारे में मैं आपको एक होमवर्क देना चाहूंगा। होमवर्क इसलिए दे रहा हूं कि हमारा समय बच सके, अदरवाइज बिना होमवर्क के भी काम चल सकता है और मैं उस समय का इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन उससे कोई बहुत ज्यादा लाभ नहीं होगा। मैं आपको होमवर्क ये देने जा रहा हूं कि इस बार हिस्ट्री पर जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं एक बार आप उन क्वेश्चंस को पढ़ जाएं और इत्मीनान के साथ पढ़ जाएं, इत्मीनान के साथ, और अपनी तरफ से ये निष्कर्ष निकालने की कोशिश करें कि ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ये सरल श्रेणी के हैं, मध्यम हैं, कठिन हैं या बहुत कठिन है, नंबर वन। और ये आप तभी कर सकते हैं जब आपने हिस्ट्री की तैयारी कर ली हो, प्लीज इसका ध्यान रखिएगा। अदरवाइज आप बिल्कुल अगर नई नई तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप इस एक्सरसाइज में मत पड़िए। हाँ, लेकिन आप सुनिए जरूर, क्योंकि आगे आपकी ये बात काम आएंगी। तो आप पढ़ जाएं, पढ़ने के बाद आप देखें कि आप कितने सॉल्व कर पा रहे हैं और इसके बारे में आपका जो अवधारणा जो बन रही है वो क्या है। सरल थे, मध्यम श्रेणी के थे, कठिन थे, बहुत कठिन थे। जब आप ये कर रहे हैं कि सरल, मध्यम, कठिन, बहुत कठिन, तो आप बकायदे उसमें इस बात का भी ध्यान रखें कि कौन से क्वेश्चन आपको बहुत कठिन लग रहे हैं, कौन से कठिन लग रहे हैं, कौन से सरल लग रहे हैं, कौन से मध्यम लग रहे हैं। तभी जाकर के आप सही अपनी रणनीति तैयार कर पाएंगे और आपको अपनी तैयारी में क्या सुधार करना है इसके बारे में आप पॉइंट्स निकाल सकेंगे। देखिए, ये सारी बातें बहुत जरूरी होती हैं बशर्ते कि आप बहुत ही व्यवस्थित और साइंटिफिक तरीके से तैयारी करने जा रहे हो, बहुत ही ठोस तैयारी हो आपकी। इसके लिए बहुत जरूरी होता है ये सब करना। आप कर लीजिए, आप अपना स्कोर बताइए अपने आप को ही कि अच्छा ये हिस्ट्री के क्वेश्चन है, जैसे मैंने 18 क्वेश्चंस कहे हैं, तो आप इसे बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप हिस्ट्री में नहीं डाल के आर्ट एंड कल्चर में डाल देंगे, आर्ट एंड कल्चर वाले को हिस्ट्री में डाल देंगे, कुछ इस तरह के प्रश्न हैं, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको 18 ही करने हैं, आप 15 से 20 के बीच में कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन जो हिस्ट्री के, जो शुद्ध इतिहास के प्रश्न हैं, उन्हें सिर्फ शुद्ध इतिहास के प्रश्न में रखिए। तो आपका स्कोर हो गया, ये होमवर्क आप कीजिए, क्योंकि यदि अगर आप ये होमवर्क कर लेंगे तो मैं इस पर जो बातें करूंगा उन्हें समझने में आपको बहुत आसानी होगी और मेरा भी वक्त बचेगा। और फिर मैं इन प्रश्नों को आधार बनाकर आप सबसे बहुत ही लंबी डिस्कशन करूंगा कि देखिए ये प्रश्न आपको कठिन लग रहा है, क्यों कठिन है, कहां पर कठिन है, कैसे सरल हो सकता है, और अगर ये प्रश्न बहुत कठिन है तो क्या हम इसका हल ढूंढ सकते हैं, और अगर हम हल नहीं ढूंढ सकते तो इसके साथ हमें क्या करना चाहिए, क्या जद्दोजहद करनी चाहिए, छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए, हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, इन सब पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। लेकिन बात करने एक बार के बाद, अभी जो मैं बात आपसे कह रहा हूं इसके बाद हम लोग आगे इस पर बात करेंगे, फिर मैं आप सबकी राय जानना चाहूंगा कि क्या ऐसा करें। बल्कि ज्यादा बेहतर है कि आप सब सोमवार तक मुझे ये बता दें कि क्या जो पैटर्न मैंने अभी आपके सामने रखा है आप इस पैटर्न के लिए तैयार हैं। अगर आप इस पैटर्न के लिए तैयार हैं तो डेफिनेटली इसकी शुरुआत हम लोग इतिहास से करेंगे, और अगर आप लोगों को बेहतर लगेगा तो फिर हम दूसरे सब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं। लेकिन आपको मैं एश्योर करना चाहूंगा कि जो करंट अफेयर्स हैं उनसे हम छुट्टी नहीं पाएंगे, आगे चल करके करेंट अफेयर्स जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे उनको हम डिटेल्स में लेंगे, और जो सामान्य जानकारी की अपेक्षा रखते हैं, मांग करते हैं, तो उनकी हम सामान्य सी चर्चा कर लेंगे। करेंट अफेयर्स से ज्यादा जरूरी मुझे सब्जेक्ट लग रहा है, क्योंकि करेंट अफेयर्स से जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, प्री की बात मैं कर रहा हूं, वो कम हो गए हैं। मैं ये नहीं कहता कि 2022 में भी वो कम ही रहेंगे, इस धोखे में बिल्कुल मत रहिएगा, लेकिन मेंस के बारे में तो आप श्योर ही हैं कि करंट अफेयर्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते, तो करंट अफेयर्स को हम लोग लेकर के चलेंगे। मुझे सफाई इसलिए देनी पड़ रही कि कहीं आप लोग ऐसा ना समझ बैठे कि अरे अरे फिर तो ये करंट अफेयर्स की कीमत पर होगा, नहीं, हमारे लिए करंट अफेयर्स ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अखबारों से पता नहीं लगता है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कुछ एंगल्स मिल जाते हैं, एनालिटिकल कैपेसिटी डेवलप होती है, ऐसा बिल्कुल भी मैं नहीं होने दूंगा, इसके बारे में आप निश्चिंत रहें। तो मुझे अपनी राय बताएं, जो मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं फ्रेंड्स, अगर आपके पास बी सेट है, बी सेट का पेपर है, मेरे पास बी सेट का पेपर है, तो आप पाएंगे कि उसमें इतिहास से ही शुरुआत की गई है, शायद इसीलिए मैंने इतिहास को उठा लिया हो, इतिहास से शुरुआत की गई है, और शुरू के जो 20 क्वेश्चन हैं वे इतिहास के हैं, हालांकि उसमें से एक दो क्वेश्चन इंटरनेशनल रिलेशंस और दूसरे भी हो जाते हैं, इसलिए मैंने अपने नंबर में 18 क्वेश्चन रखा है, तो बी में आपको शुरुआत में ही मिल जाएंगे। और जो दूसरे सेट हैं, आप देखेंगे कि जो क्वेश्चंस होंगे वो 25 25 25 25 करके वो बदलते हैं ए बी सी डी में, तो आपके पास जो भी सेट होगा वहां आपको इकट्ठे 25 क्वेश्चंस मिलेंगे, और उसमें जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे वो इसी पैटर्न पर होंगे जिस पैटर्न की मैं बात कर रहा हूं, तो वहां आपको ज्यादा जद्दोजहद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं होगी। तो दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप इस पर काम करें, काम करने के बाद मुझे जल्दी से जल्दी बता दें, सैटरडे संडे का दिन आपके पास है, अगर इस बीच में आपके मेल मुझे मिल जाएंगे तो फिर मंडे के लेक्चर की तैयारी मैं उसी तरीके से करूंगा, और फिर हम लोग विस्तार से इस पर बातें करते हैं। तो दोस्तों, आज अपनी बात मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगा। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करने की इजाजत भी चाहता हूं। फिर मुलाकात होगी और बातें करेंगे, मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें, नमस्कार।